अभी लेख पूरा नहीं हुआ है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन सुना रहे हैं संजय। भीष्म पितामह के धराशायी हो जाने के बाद संजय ने आकर समाचार सुनाया तो कहता मुझे शुरू से सुनाओ। संजय को ऐसी विद्या थी कि वो भूतकाल भविष्यकाल सब वो युद्ध की बातें बता सकते थे। तो युद्ध तो 10 दिन तक चला, 18 दिन तक चला, पर 10 दिन के बाद की घटना सुना रहे हैं। मैंने 10 दिन भीष्म पितामह लड़े थे उससे पहले ही घटना ज्यों की त्यों, जैसे कोई फिल्म में रिकॉर्ड होती है ऐसे। तो खूब जोरदार घमासान युद्ध हो रहा था। कल एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भी उठा लिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, पराक्रम दिखाया और अनेक योद्धाओं पर विजय प्राप्त की। इतनी बात हो गई। रात्रि में विश्राम करने सब चले गए। संजय ने कहा कि रात बीतने पर चौथे दिन प्रातःकाल भीष्म जी बड़े क्रोध में भरकर सारी सेना सहित शत्रुओं के सामने आए। उनके साथ बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की तरफ से अर्जुन वगैरह भीष्म के सामने युद्ध का मोर्चा लिए हुए थे। अभिमन्यु ने देखा कि मेरे पिता अर्जुन भीष्म जी से युद्ध करते हैं, वो अपनी सेना में ही अपने रथ को चीरता हुआ वहां पहुंच गया। भीष्म जी ने अभिमन्यु को छोड़कर अर्जुन पर बाण लगाया। भीष्म जी उस समय बड़े मुस्कुराकर कहने लगे, ए बालक, तू बहुत छोटा बच्चा है, तुझे देखकर मुझे दया आती है, तुझ पर क्या बाण चलाऊं? छोटे से बालक अभिमन्यु ने कहा, पितामह, युद्ध भूमि में कोई बड़ा बूढ़ा होता है, यदि इतना ही है तो फिर मेरे पिता आप से क्यों युद्ध करते हैं? छोटे से अभिमन्यु की बात की उन्होंने हंस करके अवहेलना सी कर दी और अभिमन्यु वहां से अपने रथ को लेकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की तरफ चला। अश्वत्थामा को 5 बाण से घायल किया, शल्य को घायल कर दिया। अभिमन्यु ने 16 वर्ष का ही था। 8 बाण से संयमनी के पुत्र की ध्वजा काट दी। दुर्योधन के साथ में 50,000 वीर थे, उन्होंने अर्जुन और अभिमन्यु को एक साथ घेर लिया। धृष्टद्युम्न ने देखा कि वो अभिमन्यु और अर्जुन दो ही हैं, वो सेना लेकर उनके ऊपर टूट पड़ा। सायमनी पुत्र तलवार लेकर रथ से कूदकर जो ही तेजी से शत्रु सेना में आने लगा, धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर उसका गदा से सिर फोड़ दिया। जब संयमनी पुत्र मारा गया तो उसका पिता संयमनी आया और धृष्टद्युम्न के सामने क्रोध में आकर उसने खूब बाण चलाए और धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगा। इधर अभिमन्यु क्रोध में भरकर मद्रराज नरेश की ओर दौड़े। इधर भीमसेन और दुर्योधन आपस में युद्ध करने लगे। भीमसेन के मन में बार बार आता था एक दुर्योधन को मार दे तो ये युद्ध आज समाप्त हो जाए। गदा लेकर के दुर्योधन ने भी क्रोध में आकर के मगधराज को उसकी 10,000 गजारोही सेना सहित आगे करके भीमसेन पर धावा बोल दिया। भीमसेन तो यही चाहता था। भीमसेन अपने रथ से कूदकर अपनी गदा से उसके हाथियों को मारना चालू किया। उसके हाथी जब गिरने लगे तो हाथियों के नीचे उसके रथ कुचल कुचल करके मरने लगे, उसकी पैदल सेना मरने लगी। भीमसेन के दिल की दहलाने वाली दहाड़ को सुनकर हाथी सुन्न हो गए। द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न ये सब आए और भीमसेन का साथ देते हुए पैने बाणों से आक्रमण कर दिए। हे धृतराष्ट्र महाराज, उस समय हमने भीमसेन के एक एक प्रहार से हाथियों को लोटपोट होते देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात भगवान शंकर अपने रौद्र रूप में रणांगण में नृत्य कर रहे हैं। आपका पुत्र नंदक आया, भीमसेन से युद्ध करने लगा। इतने में दुर्योधन ने आकर फिर भीमसेन पर वार किया। भीमसेन रथ पर चढ़ गए और अपने सारथी से बोले, देखो महारथी, देखो ये महारथी धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे प्राणों के ग्राहक होकर आए हैं, सो मेरे रथ को इनके सामने बड़े वेग से तुम आगे बढ़ाओ, अभी इनका सफाया कर देता हूं। 3 बाण नंदक की छाती में मारे। दुर्योधन और भीमसेन दोनों आपस में बाणों की बौछार करते रहे। भीमसेन का धनुष काट दिया। भीमसेन ने दूसरा दिव्य धनुष लिया, तीखा बाण चढ़ाकर दुर्योधन का धनुष काट दिया। उस समय में भीमसेन की छाती पर बाण ऐसे छोड़े, भीमसेन अचेत हो गया। तत्काल अभिमन्यु आगे आकर दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। थोड़ी देर में भीमसेन को चेत हो गया और फिर दुर्योधन के साथ युद्ध करते रहे। इतने में ही आपके 14 पुत्र आए और उन 14 पुत्रों में से सेनापति सुषेण, जलसंध, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुर्भ्रष्टहर्ष, विवत्सु, विकट और सम, ये 14 एक साथ उनके ऊपर आक्रमण किए। तो जलसंध को सेनापति को, सुषेण को सेनापति माने सेनापति नाम था उसका, सेनापति सेनापति नहीं था, नाम ही था। सुषेण को, उग्र को, सबको भीमसेन ने अकेले नहीं मारा। भीष्म जी ने देखा कि अरे भीमसेन तुम्हारी सेना को नष्ट करने जा रहा है, भीमसेन का मुकाबला करो। कोई भीमसेन के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तब भीष्म जी महाराज स्वयं भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। दोनों में खूब युद्ध हुआ। फिर अभिमन्यु बीच में आया। भीमसेन की ऐसी स्थिति देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध आया। उसने वहां पर अपनी भीषण माया फैलाई। राक्षसी माया को खूब जानता था घटोत्कच। क्षण भर में नया नया रूप बनाए। कभी ऐरावत हाथी पर चढ़ जाए, कभी रथ पर, कभी अदृश्य, कभी क्या, कभी क्या, ऐसा पीड़ित करने लगा। तो भीष्म जी ने आचार्य द्रोण से और राजा दुर्योधन से कहा, हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच से युद्ध करते करते बड़ी आपत्ति में फंस गए। देखो पांडव लोग कितना आनंद मना रहे हैं और हम सब लोग देखते रह गए हैं। यदि घटोत्कच से रक्षा नहीं की तो हमारी सेना में भगदड़ मच जाएगी। भीष्म जी ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि मैं इस घटोत्कच से युद्ध करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह भीम का पुत्र है, छोटे बच्चों से युद्ध करना मेरे लिए उचित नहीं है। अतः अब पांडवों के साथ युद्ध करना भी ठीक नहीं है। मेरे विचार से युद्ध को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सायंकाल का समय हो रहा है। कौरव लोग घटोत्कच के आतंक से घबराए हुए थे ही, सबने कह दिया चलो आज का युद्ध बंद करो। पूर्ण संध्या काल होने से पहले ही भीष्म जी ने अपना शंख बजाकर युद्ध विराम कर दिया। पांडव लोग भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके प्रसन्नता के साथ अपने शिविर में आए और कौरवों में निराशा छा गई। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय पांडवों का ऐसा पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा भय लगता है, क्या बात है? सब ओर से मेरे पुत्रों का ही पराभव हो रहा है, तो मेरे पुत्रों की कैसे जीत होगी? संजय विदुर के वाक्य मेरे हृदय को भस्म कर डालेंगे, भीम अवश्य ही मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम भूमि में मेरे बेटों की रक्षा कर सके। हे सूत, संजय एक बात पूछता हूं, मुझे ठीक ठीक बताओ, पांडवों में ऐसी शक्ति आई तो कहां से आई? संजय ने कहा, महाराज आप सावधानी से सुनिए और जैसा सुने वैसा निश्चय भी कीजिए। इस समय जो कुछ हो रहा है वो किसी भी मंत्र या माया के कारण से नहीं हो रहा है। महाबली पांडव लोग सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं और जहां धर्म होता है वहां विजयश्री अपने आप दौड़ करके आती है। इसी कारण से पांडव अवध युद्ध कर रहे हैं और उनकी जीत हो रही है। और महाराज आप सत्य कह रहे हैं, पांडवों की जीत अंत में होगी ही। आपके पुत्र कितने दुष्ट चित्त वाले हैं, पाप परायण है, निष्ठुर है, कुकर्मी है, और वे युद्ध में विजय भी चाहें? अधर्मी आदमी अपनी उन्नति कर लेगा? ऐसा प्रकृति का विधान थोड़ा ही है। नीच पुरुषों के समान इन लोगों ने बेचारे पांडवों को कितनी क्रूर यातनाएं दी हैं, अब उनके पापों का भयंकर परिणाम आने वाला है। इसलिए पुत्रों के साथ अब आप भी उस पाप का फल भोगिए। कितनी बार आपको विदुर जी ने, भीष्म जी ने, द्रोण ने, मैंने आपको समझाया था, आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई मरने वाला व्यक्ति होता है उसको औषध अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही आपको भी हित की बात अच्छी मालूम नहीं दी। अब आप मुझसे पांडवों की विजय का कारण पूछते हैं तो मैं सुनाता हूं। उस दिन आपके भाइयों ने घटोत्कच के सामने हार सी स्वीकार कर ली थी, युद्ध बंद हो गया। आपका प्रिय पुत्र दुर्योधन मन में टूट चुका था, वह पराजित हुआ। दुर्योधन रात्रि के समय अकेला भीष्म जी के पास गया और भीष्म जी से बड़ी करुणा से रोते हुए पूछा, दादाजी मैं समझता हूं कि आप द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण और भगदत्त आदि महारथी तीनों लोकों के साथ संग्राम करने में समर्थ हैं, किंतु आप सब मिलकर भी पांडवों के पराक्रम के सामने टिक नहीं पा रहे, क्या बात है? मुझे बड़ा संदेह हो रहा है, कृपया मुझे बताइए कि पांडवों में ऐसी क्या बात है जिस कारण वे क्षण क्षण में जीतते चले जा रहे हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन बहुत दिनों के बाद ये प्रश्न पूछा है, यदि ये प्रश्न तुम हमसे राजमहल में पूछते तो हम उसका और ढंग से जवाब देते। आज तुम युद्ध के अवसर पर ये बात पूछते हो, शायद तुम्हारे ये बात समझ में आएगी या न आएगी, लेकिन आज कम से कम तुमने पांडवों के विषय में जिज्ञासा तो की, तो मैं पांडवों की अवध्यता का कारण बताता हूं। सुनो, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं हुआ, न है और न होगा, जो कृष्ण से सुरक्षित इन पांडवों को परास्त कर सके। युधिष्ठिर एकदम, ये धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन एकदम कांपने से लग गया। दुर्योधन गंभीरता से विचार कर, मैं तुम्हें जो बात कहता हूं वो ऋषि मुनियों की सुनी हुई बात कह रहा हूं, समझी हुई बात कहता हूं, बहुत पुरानी बात है। गंधमादन पर्वत पर समस्त देवता मुनिगण सब मिलकर के पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय उन सब के बीच में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाश में एक तेजोमय विमान देखा, चमकता हुआ विमान। ब्रह्मा जी खड़े होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उस विमान को देखकर हाथ जोड़ने लगे और बड़े विधि विधान से उस विमान में विराजमान भगवान की पूजा करने लगे और स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले हो, ये विश्व आपका ही रूप है, आप विश्व के स्वामी हो। हे महादेव, आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हो, परम सौम्य हो। मैं स्वयं ब्रह्मा आप ही का पुत्र हूं, आप असंख्य गुणों के आधार हो, सबको शरण देने वाले हो, सबकी कामना पूर्ति करने वाले हो, आप ही प्रजापतियों के स्वामी हो, आप पद्मनाभ हो, सारे देवता आप ही के स्वरूप हैं, आप इस पृथ्वी पर कृपा कीजिए और यदुवंश में अवतार लेकर आप अपनी लीला और कीर्ति फैलाइए, धर्म की स्थापना कीजिए, दैत्यों का वध कीजिए, जगत की रक्षा कीजिए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे भगवान वासुदेव, आपका जो परम गुह्य स्वरूप है वो हमने आपके सामने प्रकट किया है और हमारे अंदर की जो भावना है वो हमने आपके चरणों में रखी है, आप इसके ऊपर हमें आश्वासन दीजिए। तब उस विमान में से श्री भगवान ने अत्यंत सुमधुर और गंभीर वाणी में कहा, हे तात, तुम्हारी वास्तविक इच्छा है वो मुझे योग बल से मालूम है और वो इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहते ही विमान सहित भगवान अंतरित हो गए। यह देखकर देवता, गंधर्व और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़े कौतूहल से ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आपने इनकी ऐसे श्रेष्ठ शब्दों में स्तुति की है, वे साक्षात कौन है, उनके विषय में हम भी सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आप इतना तो समझते हो, जो बिना कहे ही सब बात समझ जाए वो भगवान ही हो सकते हैं, वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है। इस समय मनुष्य योनि में कई दैत्य लोग आ चुके हैं और बड़ा अधर्म फैला रहे हैं। इनके वध के लिए मैंने इनसे प्रार्थना की है कि आप नर सहित मनुष्य रूप में ही उत्पन्न होइए। अब वे नर नारायण स्वयं मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, लेकिन मूर्ख आदमी उनको नहीं पहचान सकेंगे। शंख चक्र गदाधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं, परंतु लोग इनको मनुष्य मानेंगे। जो परमात्मा में प्रेम करने वाले हैं वो इनको मनुष्य मान करके कभी तिरस्कार नहीं करेंगे। ये परम गुप्त है, परम पद है, परम ब्रह्म है, परम यश है, परम अक्षर है, अव्यक्त है, सनातन है, परम सत्य है। अतः अपने सुहृदों को अभय करने वाले इन किरीट कौस्तुभधारी श्री हरि का जो भी तिरस्कार करेगा वो भयंकर अंधकार में पड़ेगा। भीष्म जी कहने लगे, दुर्योधन देवताओं ऋषियों से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उन्हें विदा किए और सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। एक बार कुछ पवित्र आत्मा मुनिगण श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे, उन्हीं के मुख से मैंने ये प्राचीन प्रसंग सुना था। यही बात मेरे गुरु जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने सुनाई थी। यही बात मतिमान मार्कंडे और व्यास तथा नारद जी से भी सुनी थी। ये सब जानकर भी हमारे लिए श्री कृष्ण वंदनीय है और पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें तो अवश्य इनकी पूजा करनी चाहिए। मैंने और अनेकों वेदवेत्ता मुनियों ने तो इन्हें बार बार श्री कृष्ण और पांडवों के साथ युद्ध ठानने से रोका था, किंतु मोहवश तुमने इसका कोई तत्व ही नहीं समझा। दुर्योधन, मैं तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हें कोई क्रूरकर्मा राक्षस समझता हूं, क्योंकि तुम कृष्ण और अर्जुन से द्वेष रखते हो। जिसके मन में भगवान के प्रति अविश्वास की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है, वो किसी राक्षस से कम नहीं होता। भला इन साक्षात नर नारायण से कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूं, ये सत्य सनातन अविनाशी सर्वलोकमय नित्य जगदीश्वर जगत धर्ता और अविकारी हैं। वे ही युद्ध करने वाले हैं, यही जय हैं और यही जीतने वाले हैं। दुर्योधन याद रखो, जहां कृष्ण है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां जय है। इसलिए श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं और अंत में उन्हीं की विजय होने वाली है। दुर्योधन भीष्म के शब्दों से कांप गया। उसने पूछा, दादाजी इन वासुदेव पुत्र को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, मैं इनकी उत्पत्ति के विषय में सुनना चाहता हूं। भीष्म बोले, भरत श्रेष्ठ वसुदेव नंदन कभी पैदा नहीं होते हैं। पैदा वो होता है जिसमें नष्ट होने का धर्म होता है। ये सबके उत्पादक हैं, लेकिन स्वयं किसी से पैदा नहीं होते हैं। ये जो जितने तुम प्राणियों को देखते हो, सुनते हो, ये सब कृष्ण से पैदा हुए हुए हैं। चाहे कोई हो, देवता हो, दैत्य हो, असुर हो, यक्ष हो, राक्षस हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई क्यों न हो, सब कृष्ण से पैदा हुए हुए। यही कृष्ण सृष्टि के अंदर कभी वराह, कभी नृसिंह, कभी त्रिविक्रम, अनेक प्रकार के अवतार धारण करते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणियों के माता पिता हैं, संपूर्ण प्राणियों के आश्रय हैं। नारद जी ने भी यही कहा, मार्कंडेय ने भी कहा, भृगु द्वैपायन अंगिरा देवल असित सब यही बात बोलते हैं कि सारा जगत परमात्मा का स्वरूप है। अब तुम जाओ, यदि तुम्हारी इतने से कुछ बुद्धि शुद्ध होती हो तो श्री कृष्ण का पूजन करो, प्रसन्न चित्त से उनका भजन करो। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों ने इनके भजन को ही परम पुरुषार्थ माना है। संजय कहते हैं, महाराज भीष्म के मुख से ये पवित्र आख्यान सुना उस समय आपके पुत्र के हृदय में श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति बड़ा आदर भाव पैदा हो गया था, परंतु से क्या कहना चाहते हो संजय? परंतु से हम ये कहना चाहते हैं कि जब वो वापिस अपनी कुसंगति में गया तो सारा प्रभाव नष्ट हो गया। उसके मन में यहां तक आई, पितामह भीष्म ने समझाया कि दुर्योधन, कृष्ण की महिमा सुनी, अर्जुन की महिमा सुनी, ये नरनारायण ऋषि हैं, अजय हैं, अवध्य हैं, मारे नहीं जा सकते, कृष्ण का इन पर अनुराग है, इनके ऊपर अपार कृपा है, तुम आज ही संधि का प्रस्ताव मेरे सामने रख दो, मैं अभी कृष्ण को कहकर ये युद्ध बंद करवा दूं और तुम्हारा राज्य तुम्हें दे दूं, पांडवों का राज्य पांडवों को दे दूं, नरनारायण की अवज्ञा से तुम बच जाओगे, एक तरफ तुम सुरक्षित रहोगे, दूसरी तरफ पांडव लोग अपने राज्य में सुखी रहेंगे। दुर्योधन, ये आज बहुत अच्छा मौका है। दुर्योधन ने कहा, दादाजी मैंने मेरे भरोसे युद्ध नहीं किया है, मैंने अपने बहुत से योद्धाओं के भरोसे युद्ध किया है, मैं उनसे पूछ लेता हूं, यदि उनकी इस विषय में सहमति हो जाएगी तो फिर आगे बात करूंगा। इतना कहकर दुर्योधन वहां से चला गया। जाकर के उसने अपने साथियों से कहा, साथियों ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये सब का इन सब बातों का समय निकल गया, जाओ विश्राम करो, हम युद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ हैं। संजय ने कहा, महाराज इतनी बड़ी बातें थी सब चौपट हो गई। हे धृतराष्ट्र महाराज, मनुष्य को अच्छी अच्छी बातें अपने विवेक से अपने अंदर मिलती हैं, परंतु दुनिया कुसंग के कारण से अपने ज्ञान को भूल जाया करती है। दुर्योधन का भी यही हाल हुआ। रात बीत गई, सूर्योदय हुआ, दोनों तरफ की सेनाएं फिर खड़ी हो गई। भीष्म जी ने मकर व्यूह बनाया, मगरमच्छ होता है ऐसे यूं ऐसे करके यूं पूछो, ऐसी सेना बनाई। तो पांडवों ने शेन व्यूह बनाया, बाज बाज पक्षी होता है वैसे, इस प्रकार से खूब आपस में घमासान युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर भीमसेन जयद्रथ के साथ, युधिष्ठिर शल्य के साथ, विकर्ण सहदेव के साथ, चित्रसेन शिखंडी के साथ खूब घमासान युद्ध किए। और उस युद्ध के अंदर मध्याह्न हो गया, सूर्य के ताप से आकाश जलने लगा, पांडवों की और कौरवों की सेना में बड़ी भीषण मारकाट चल रही थी। भीष्म पितामह ने पांडव सेना का विध्वंस प्रारंभ किया। धृष्टद्युम्न आदि जितने पांडव पक्ष के वीर थे वे सब भीष्म पितामह के सामने युद्ध करने में अपनी पूर्ण कला दिखा रहे थे। अश्वत्थामा का कवच भेद दिया गया, अर्जुन ने बड़े फुर्तीले बाण चलाए, उसका कवच टूट गया। दुर्योधन के 10 बाणों से भीमसेन को बीन दिया गया। सात्यकी के 10 महारथी पुत्रों ने भूरिश्रवा का पराक्रम देखा तो वो भूरिश्रवा भी क्रोध में भर करके इन 10ों के मस्तक काट दिए। सायंकाल हो गया और युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, आज मकर व्यूह की रचना अपने करेंगे। तो उन्होंने मकर व्यूह की रचना की तो भीष्म जी ने क्रौंच व्यूह की। खूब आपस में गवन लंबा चौड़ा कितना युद्ध का बताए, सुनते सुनते आदमी उगता जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय हमारी सेना में अनेक गुण है, अनेक योद्धा है, शास्त्रीय रीति से व्यूह निर्माण करते हैं, सैनिक भी खूब हृष्ट पुष्ट है, किसी के भी दुर्व्यसन नहीं है, सेना में एकता भी है, बड़े न तो बड़े बूढ़े लोग हैं, न बिल्कुल छोटे बालक भी है, न बहुत मोटे मोटे हैं, न कोई बहुत दुर्बल है, सब फुर्ती वाले हैं, निरोग हैं, अच्छा कवच है, अच्छा शस्त्र है, सब प्रकार की कलाएं इनके पास है, तलवार में सब प्रकार के पैतरे जानते हैं, कुश्ती लड़ना जानते हैं, गदा युद्ध करना जानते हैं, भाला युद्ध करना जानते हैं, सब जानते हैं, फिर भी ये हमारी सेना क्यों मर रही है? कोई हमारे लोगों का ही भाग्य खराब है? पांडवों का तो कुछ ज्यादा बिगड़ता सुनते ही नहीं है। विदुर जी ने मुझे बात कही थी, वो बात याद आ रही है। मैं क्या करूं संजय, वो मूर्ख दुर्योधन नहीं मानता। संजय ने कहा, महाराज राजा तो आप है ना, दुर्योधन तो आपका पुत्र है ना, पर मैं भी क्या करूं, दुर्योधन को छोड़कर मैं जा भी कहां सकता था, किसका दोष नहीं, होनहार है वैसा ही है। बोलो संजय, ये किसके अपराध से हम लोग हार रहे हैं? संजय बोले, अपने ही अपराध से हम हार रहे हैं। पहले जो जुआ का खेल हुआ था, आज जो पांडवों के साथ युद्ध छेड़ा गया है, इन दोनों में आपका दोष है। क्यों आपने उनको जुआ खेलने की आज्ञा दी? इस लोक में या परलोक में मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र महाराज, आप केवल दुर्योधन के पिता नहीं थे, पांडवों के भी पिता थे। यदि पांडवों ने जुआ खेलने के लिए हां भी भर ली, तो भी आपको उस समय फटकार करके युधिष्ठिर को मना करना चाहिए था। युधिष्ठिर, तुम्हारे जैसा धर्म पुरुष जुआ में यदि बैठ जाएगा तो संसार का क्या होगा? फटकार थी, वो फटकार कितनी काम आती। अब तो भीमसेन के तीखे बाणों से आपकी सेना का संहार जो हो रहा है वो सुनिए। उस समय आपके कितने पुत्र एक साथ आए भीमसेन के रथ के आसपास। भीमसेन उस समय इतना क्रोध में आग बबूला हो गया कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने युद्ध करने का साहस करते हैं। उस समय उनके क्रोध से आंख में आंसू आ गए। लंबा श्वास लेते हुए उसने अपने सारथी से कहा, सारथी इस समय मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच में जाना है। बस सारथी ने अपने घोड़े मोड़े और आपके पुत्रों के सामने भीमसेन चले आए गदा लिए हुए। धृष्टद्युम्न को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने देखा कि भीमसेन आज वहां पहुंच गए हैं, वो भी उनके पीछे चल दिया। इतने में ही भीमसेन ने गदा से हाथियों को कुचल करके मार्ग बनाया, फिर जो है सेना में घुसा। पीछे से धृष्टद्युम्न आए, अब उनकी सेना का संहार करने लगे। इतने में ही सम्मोहनास्त्र चला दिया, सब मोहित हो गए। लेकिन द्रोणाचार्य बीच में आकर प्रज्ञास्त्र का प्रयोग किया तो सब वापस होश में आ गए। खूब घमासान युद्ध हुआ। भीम और दुर्योधन का बहुत रोमांचकारी युद्ध हुआ। भीमसेन ने दुर्योधन से कहा, मूर्ख आज मुझे यह अवसर मिला है जिसकी बहुत वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था। तेरे एक एक कर्मों को मैं याद करता हूं तो मुझे तू सृष्टि में खटकता मालूम देता है। दुर्योधन, आज तेरा वध कर डालूंगा। माता कुंती को तेरे कारण से कष्ट उठाने पड़े, तेरे कारण से हम लोगों ने वनवास भोगा, तेरे कारण से द्रौपदी को अपमान का दुख सहना पड़ा। इन सब का बदला लिए बिना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। इस प्रकार भीमसेन ने धनुष चढ़ाया और दुर्योधन पर जलती हुई अग्नि की शिखा के समान 26 बाण छोड़े। 2 बाण से धनुष काटा, 2 से सारथी को मारा, 4 से 4 घोड़ों को मारा, 2 बाणों से छत्र काटे, 6 बाणों से ध्वजा काटी और बड़े उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा, मूर्ख आओ, इतना बड़ा तू अपना योद्धा मानता है, कहां दूसरे रथ में जाकर के तू छिपना चाहता है। तो वह रथ के पिछले हिस्से में जाकर, दूसरे के रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया और कई योद्धाओं को कह रहे, इस भीमसेन को, इस राक्षस को तुम मारते क्यों नहीं हो। फिर 8 यशस्वी वीर आए, अभिमन्यु को घेरा और फिर अभिमन्यु ने भी उनके साथ में खूब युद्ध किया। संजय कहते हैं कि अब युद्ध करते हुए 6 दिन बीत गए। मंडलाकार इस युद्ध के अंदर युधिष्ठिर ने अपनी सेना का वज्र व्यूह बनाया, इंद्रास्त्र छोड़ा, द्रोणाचार्य ने इधर विराट को घेर लिया और अंत में विराट को, विराट के घोड़ों को मार डाला, सारथी को मार डाला। विराट रथ से कूद पड़े और अपने पुत्र के रथ पर चढ़ गए। दोनों पिता पुत्र आचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे और आचार्य ने एक राजकुमार शंख पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा, वो वहीं पर पृथ्वी पर पूरा हो गया। राजा विराट डर गए, दुख भी हुआ, मेरा पुत्र मारा गया। द्रोणाचार्य के पराक्रम से सारी सेना में भगदड़ मच गई। पांडु सेना में शिखंडी आए, सात्यकी आए, धृष्टद्युम्न और दुर्योधन, ये आपस में युद्ध हुए, युद्ध करने लगे। जब पांडवों के इस प्रकार से हार सी होने लगी तो घटोत्कच बीच में कूद पड़ा। घटोत्कच ने कई प्रकार की माया फैलाई। घटोत्कच ने कभी तो दृष्टि दिखानी, कभी छिपना, कभी छिपाना, इस प्रकार का युद्ध हुआ। एक बार आपके पुत्र अभिमन्यु के सामने आया, चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन तीनों पुत्र आए और अभिमन्यु ने उनको ऐसा घेरा कि अब की बार यदि बाण मारा जाता तो एक बाण से तीनों मर सकते थे, परंतु अभिमन्यु ने आपके इन सब पुत्रों को रथहीन तो कर दिया, भीमसेन की प्रतिज्ञा याद करके इनका वध नहीं किया। संजय, ऐसा कैसा भीम है कि जिसको कोई हमारी सेना में से मार नहीं सकता है। संजय ने कहा, हमारा ये भीमसेन भी कोई कम नहीं है, पांडव में। अर्जुन ने भीष्म की रक्षा के लिए राजाओं के पास पहुंचकर उनमें से सुसर्जमा से कहा कि देखो, आप बड़े उत्तम योद्धा हो और हमारे पुराने शत्रु भी हो, लेकिन आज आपने अनिति का बहुत बड़ा फल प्राप्त करने का अवसर लिया है। मैं आज आपको मारकर आपके पितामह का दर्शन कराऊंगा। तुमने इतना अपराध किया है। खूब आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे। 7वें दिन सुबह भीमसेन ने, अकेले भीमसेन ने आपके 7 पुत्रों को मारा, 8 पुत्रों को मारा। धृतराष्ट्र कहते हैं कि भीमसेन ने मेरे बहुत से पुत्रों को मार डाला। उस समय भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचारी क्या करते रहते हैं, मुझे ये बात सुनाओ। तुम मेरे पुत्रों की मरने की बात तो बड़े उत्साह से सुनाते हो, लेकिन पांडवों में से कोई मरता ही नहीं, उनकी बात तुम सुनाते नहीं, क्या बात है। मैंने भीष्म ने, विदुर ने, दुर्योधन को बहुत समझाया, गांधारी ने भी समझाया, पर मूर्ख ने मोह बस एक न मानी, उसका फल उसको भी भोगना पड़ता है और हमको भी भोगना पड़ता है। संजय ने कहा, महाराज, इस संसार में जो व्यक्ति हित की बात नहीं मानता है उसकी अंत में ऐसी ही दशा होती है। अपने पुत्रों को जुआ खेलने से रोकिए, कितनी बार विदुर जी ने कहा। पांडवों से द्रोह मत कीजिए, कितनी बार विदुर जी ने कहा। किंतु आप सुनना ही नहीं चाहते थे। जैसे मरने वाले मनुष्य को दवा बुरी लगती है, ऐसे आपको अच्छी बातें बुरी लगती हैं। आज कौरवों का विनाश हो रहा है, सावधान होकर युद्ध सुनिए। दोपहर का समय था, महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से सारी सेना में भीष्म के ऊपर चढ़ाई करने का विचार हुआ। अर्जुन द्रौपदी के पास पुत्र और चेकितान ये सामना करने लगे। द्रोणाचार्य भी क्रुद्ध होकर सिंजरियों पर आक्रमण करने लगे। इधर शकुनी के भाइयों ने इरावान पर आक्रमण किया। इरावान था अर्जुन का बेटा और ये नाग कन्या से पैदा हुआ था। तो इरावान को वहां पर युद्ध में भेजा। अलंबुस नाम का एक राक्षस था, वो बकासुर के वध के कारण से भीमसेन से बैर रखता था और दुर्योधन से कहा, देखो ये अर्जुन का पुत्र इरावान बहुत बलवान है, मायावी है। और दुर्योधन ने कहा, कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी सेना का ये संहार न कर सके, बहुत अच्छा। इतना कहकर के उसने अनेक प्रकार की माया फैलाई और अंत में इरावान का सिर काट दिया। इरावान को मरा हुआ देख करके पांडवों ने उस युद्ध में क्या किया, आज ये बात सुनी तो मेरा कलेजा कुछ ठंडा हुआ है। कम से कम पांडवों का इरावान तो मरा। संजय ने कहा, महाराज इरावान तो मारा गया, परंतु उसके बाद क्यों? उसके बाद भीमसेन का पुत्र घटोत्कच, इसने ऐसी गर्जना की, आवाज से समुद्र पर्वत और सारे जंगल की पृथ्वी डगमगाने लग गई। एक तरह से देखा जाए तो ये भीमसेन का पुत्र भीमसेन से भी बढ़कर था। उसके भयंकर नाद को सुनकर के आपके सैनिकों के पैरों में काठ मारा गया, वे थर थर कांपने लग गए, उनके अंगों से पसीना छूटने लग गया, सबकी बड़ी दयनीय अवस्था हो गई। घटोत्कच क्रोध के मारे यमराज के समान दिखाई दिया। उसके हाथों में जलता हुआ एक त्रिशूल था, साथ में तरह तरह के हथियारों से लैस उसके पास राक्षसी सेना थी। दुर्योधन इतना घबराया, कहने लगा, अरे ये तो भयंकर राक्षस आ गया, मेरी सेना इसके डर से पीठ दिखाकर भाग रही है, बचाओ वीरों, सेना को भागते हुए बचाओ, घटोत्कच के ऊपर युद्ध करो, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब बंगाल का राजा सहायता के लिए आया। बंगाल का कोई राजा दुर्योधन की सहायता के लिए आया है। घटोत्कच उसके ऊपर बड़ा कुपित हुआ और कुपित होकर बोला, तुम दुर्योधन की सहायता के लिए आए हो, उसका परिणाम भी तुम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन भी उनके साथ में घटोत्कच के साथ में युद्ध करने लगा। घटोत्कच को बड़ा क्रोध आया। घटोत्कच ने उस समय अपने बाणों से शक्ति से दुर्योधन को एकदम ढक दिया, दुर्योधन के रथ को तोड़ दिया। उस समय दुर्योधन दूसरे रथ की तरफ जाने लगा तो उसने एक हाथी के धक्का लगाया। हाथी के धक्का लगाया तो वो हाथी न जाने कितनों हाथियों को ले आ रहा, वो हाथी उस पर। ऐसे कई हाथी मारे गए और उनके नीचे कई और योद्धा मारे गए। बंगाल का राजा फिर भी बच गया और फिर वहां घमासान युद्ध होने लगा। कौरव पक्ष में बड़ी खलबली मच गई। कृपाचार्य भूरिश्रवा शल्य अश्वत्थामा ये सब पराक्रम करते हैं, परंतु घटोत्कच की भयंकर माया सबको मोहित कर रही है। कौरव पक्ष के सभी योद्धा माया के प्रभाव से युद्ध छोड़कर भागने लगे। उन्हें ऐसा दिखता था कि मेरे सिवा सभी सैनिक शस्त्रों से छिन्न भिन्न खून में डूबे हुए पृथ्वी पर छटपटा रहे हैं। उनको माया के द्वारा घटोत्कच ने दिखाया, द्रोणाचार्य मर गए, दुर्योधन मर गया, शल्य मर गया, अश्वत्थामा मर गया, तब वे सैनिक देख रहे अपने आंखों से और सब भागने लगे।
लोगों ने भक्ति क्यों, अब हम क्यों युद्ध करें, मरने के लिए थोड़ी आए। द्रोणाचार्य मर गए, दुर्योधन मर गया, शल्य मर गया, अश्वत्थामा मर गया। भीष्म जी कह रहे अरे कुछ नहीं है, ठहरो वीरो, मैं भीष्म जीवित बैठा हूं ना, कोई नहीं मरा, ये तो राक्षस की माया है, भगो मत, युद्ध करो, इस माया पर विश्वास मत करो, हम लोगों की बात पर विश्वास करो। इधर पांडव लोग घटोत्कच के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगे, दुंदुभियां बजाने लगे, रणभूमि गूंज उठी और सूर्यास्त होते 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 घटोत्कच ने वहां से सारी सेना को भगा दिया। संजय ने कहा आज के युद्ध से दुर्योधन बहुत घबराया, हतोत्साहित हो गया और रात्रि में भीष्म के पास आया, बड़ी नम्रता से कहने लगा, मारा पितामह, पांडवों ने जैसे कृष्ण का सहारा लिया है उसी प्रकार हम लोगों ने आपका सहारा लिया है, शत्रुओं के साथ घोर युद्ध ठाना है, मेरे साथ 11 अक्षौहिणी सेना आपकी आज्ञा के पालन के लिए तैयार है, तो भी आज घटोत्कच की सहायता पाकर पांडवों ने युद्ध में मुझे हरा दिया है, मैं अपमान की आग में जल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आपकी सहायता लेकर उस अधम राक्षस का स्वयं ही वध करूँ, आप कोई इस विषय में मेरा मनोरथ सफल कीजिए। भीष्म जी ने कहा दुर्योधन तुम्हें जरा राजधर्म का ध्यान रखना चाहिए, तुम राजा कहलाते हो और वो भीमसेन का बेटा है, उसके साथ युद्ध करोगे, तुम युद्ध करो युधिष्ठिर के साथ, भीम के साथ, अर्जुन के साथ, नकुल सहदेव के साथ, मैं भी घटोत्कच के साथ युद्ध नहीं करता हूं, बच्चा है, तुम राजा हो और घटोत्कच बहुत साधारण है, तुम्हारा भतीजा है, उसके साथ युद्ध मत करो, मैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा कृतवर्मा उसके साथ युद्ध कर सकते हैं, मैं भी नहीं करता हूं, तुम तो राजा कहलाते हो, तुम्हारा युद्ध करना ठीक नहीं है। भगदत्त से बोले भीष्म जी कि देखो आपको अब घटोत्कच के साथ मुकाबला करना है। भगदत्त एक बहुत बड़े वीर थे कौरव सेना में, शत्रुओं की ओर चले, खूब घमासान युद्ध हुआ और खूब आपस में युद्ध होता रहा, घटोत्कच भी खूब युद्ध करता रहा, पांडव लोग उसे खूब शाबाशी देते रहे, भगदत्त से सहन नहीं हुआ, खूब बाणों की वर्षा की, घटोत्कच ने भी कोई बाणों की वर्षा करने में कमी नहीं रखी, इस प्रकार से युद्ध होता रहा। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को युद्ध के एक ऐसे मोर्चे पर ले गए थे जहां अर्जुन ने बहुत बड़ी कौरवी सेना का संहार किया था, वहां उसे पता नहीं था कि मेरा पुत्र इरावान मर गया है, बाद में उसको पता चला तो ठंडी सांस लेने लगा और थोड़ा सा हतोत्साहित होकर कृष्ण से कहने लगा, हे कृष्ण, महामती विदुर ने कौरवों और पांडवों के भीषण संहार की बात पहले ही कही थी, इन्होंने राजा धृतराष्ट्र को रोका भी था, हे मधुसूदन, इस युद्ध में कौरवों के हाथ से हमारे और भी बहुत से वीर मारे जा चुके हैं और हमने भी कौरवों के कई वीरों को नष्ट कर दिया है, ये सब हम कुकर्म क्यों कर रहे हैं, केवल धन के लिए तो करते हैं, राज्य के लिए तो करते हैं, धिक्कार है ऐसा धन, धिक्कार ऐसा राज्य जिसके लिए भाई बंधुओं का विनाश हो, यहां एकत्रित हुए अपने भाइयों को मारकर हमें मिलेगा क्या, ओहो, आज दुर्योधन के अपराध और शकुनी तथा कर्ण के कुमंत्र से ही क्षत्रियों का विध्वंस हो रहा है, मधुसूदन मुझे तो अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परंतु
कहीं क्षत्रिय लोग मुझे युद्ध में असमर्थ न समझ लें, इसलिए युद्ध तो करूंगा ही। और फिर आपने भी मुझे कर्तव्य का बोध कराया है, इसी कारण से मैं युद्ध में डटा हुआ हूं, नहीं तो मैं ऐसे युद्ध में अपने को कभी शामिल नहीं करता। अब विलंब मत कीजिए और शत्रु सेना की तरफ अपना रथ बढ़ाइए। क्या बताएं धृतराष्ट्र, उस समय में अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने हवा के समान वेग वाले घोड़ों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। सेना में बड़ा कौतूहल छा गया। भीमसेन ने व्यूढ़ोरस पर वार किया, व्यूढ़ोरस धृतराष्ट्र का पुत्र था। फिर कुंडली था, उसको मारा। भीमसेन ने अनादृष्टि, कुंडभेदी, वैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु, कनकध्वज, इन सबको मार दिया। भीमसेन, आपके पुत्रों का नाश करने में लगे हुए थे, द्रोणाचार्य उन सबको बचाने में लगे हुए थे, भीमसेन ने बड़ा अद्भुत काम किया। द्रोणाचार्य जी रोकते हुए भी उनको रोक नहीं पाए। भीष्म, भगदत्त, कृपाचार्य, इन्होंने भी बहुत रोका, अर्जुन को भी रोका, लेकिन अर्जुन को रोक नहीं पाए। अतिरथी अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को व्यर्थ कर दिया। अभिमन्यु ने राजा अम्बष्ट को रथहीन कर दिया और फिर दोनों का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। युद्ध कौशल में अभिमन्यु ने तलवार की आती हुई फुर्ती से अपने को बचा लिया और सारी सेना कहने लगी, वाह बालक वाह, सूरवीर हो तो ऐसा हो। चाहे कौरव सेना हो चाहे पांडव सेना, दोनों अभिमन्यु के इस अपने आप के बचाव के लिए सब प्रशंसा करने लगे, आपस में खूब भिड़ने लगे। और इतने में ही रात्रि हो गई, शंख बजा दिया, सब अपने अपने डेरों पर चले गए। संजय कहते हैं, महाराज शिविर में पहुंचकर मुंह लटकाया हुआ दुर्योधन अपने गुप्त स्थान पर जाकर शकुनी, दुशासन और कर्ण, इन तीनों के साथ बैठकर विचार विमर्श करने लगा। इन चारों ने आपस में विचार किया कि पांडवों को उनके साथियों के सहित किस प्रकार जीता जाए। राजा दुर्योधन ने रोते हुए अपने शकुनी, दुशासन और कर्ण से कहा, क्या बताऊं, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य और भूरिश्रवा ये पांडवों की प्रगति को रोक नहीं रहे हैं, इसमें कोई कारण है? इस प्रकार ये पांडवों का वध नहीं होगा तो हमारी सेना कभी नहीं जीत सकती। यदि ये लोग युद्ध करने के लिए अपना मानस बना लें तो एक क्षण में पांडवों की सेना को तहस नहस कर देते। कर्ण, आज तेरी प्रतिज्ञा से मुझे बड़ी हानि हो रही है, मेरी सेना और शस्त्रों में बड़ी कमी आ गई है। इस समय पांडव वीर अवध्य हो चुके हैं, मेरे कितने भाई मर चुके हैं, और भीम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा है और भीष्म युद्ध तो करते हैं लेकिन वे पांडवों को मारते नहीं है। मुझे बड़ा संदेह हो गया है कि मैं क्या करूं, किस प्रकार पांडवों से युद्ध करूं और द्रोणाचार्य, भीष्म आदि से क्या करूं। कर्ण ने कहा, मेरे परम मित्र दुर्योधन, आप चिंता न कीजिए, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं। बस एक काम कीजिए, आप भीष्म जी को जल्दी से जल्दी संग्राम से हटा दीजिए। उनको कहिए कि अब आप वृद्ध हो चुके हैं और 8 दिन हो गए हैं, युद्ध करते करते विश्राम कीजिए। जो ही भीष्म जी युद्ध छोड़ देंगे त्यों ही मैं वहां युद्ध भूमि में आ जाऊंगा और भीष्म जी के रहते रहते पांडवों को समस्त सौमक वीरों सहित नष्ट न कर दूं तो मैं कर्ण नहीं सत्य की सौगंध खाके कहता हूं। दुर्योधन भीष्म जी पांडवों के साथ दया करते हैं। तुमने पहले ही दिन सुना होगा ना, विजय का आशीर्वाद दिया। वाह, आज भी आशीर्वाद भी देते हैं और धनुष बाण भी चलाते हैं। द्रोणाचार्य को भी सुना, कृपाचार्य को भी सुना, शल्य को भी सुना, आशीर्वाद देना और युद्ध करना, क्या इसमें गूढ़ा भी संधि नहीं है? अतः आप भीष्म जी के डेरे पर जाइए, रात्रि में कोई विशेष आपको कठिनाई भी नहीं होगी। उन्हें कहिए कि आप शस्त्र अस्त्र रख दीजिए, एक तरफ बैठ जाइए, विश्राम कीजिए, या फिर सेनापति पद का त्याग पत्र दे दीजिए। दुर्योधन ने कहा, वाह कर, एक मित्र को जो सलाह देनी चाहिए वो आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। मैं ऐसा ही करूंगा, अभी भीष्म जी के पास जाता हूं और उनके सामने प्रार्थना करके तुरंत तुम्हारे पास आता हूं। तुम ये समझ लो कि कल से तुम सेनापति हो गए हो। भीष्म के हट जाने के बाद ये सेनापति का पद मैं तुम्हें दूंगा, अथवा युद्ध के अंदर तो आमंत्रित कर ही दूंगा। दुर्योधन बड़े उत्साह से अपने भाइयों से भीष्म जी के पास गया। दुशासन ने उसे घोड़े पर चढ़ाया। भीष्म जी के डेरे पर पहुंचकर घोड़े से उतरकर पितामह भीष्म के चरणों में बड़ी नम्रता दिखाकर उनको प्रणाम करके और उनको एक सोने के सिंहासन पर बैठाया है। बैठिए, बात करनी है। फिर उसने नेत्रों में आंसू लाए, हाथ जोड़ा, गदगद कंठ से कहा, दादाजी आपका आश्रय पाकर तो हम इंद्र के सहित सारे देवताओं को जीतने का साहस रखते हैं, फिर अपने मित्र और बंधु बांधवों के सहित इन पांडवों की बात ही क्या है? ये आपके सामने पांडव है ही क्या? इसलिए अब आपको मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए। आप पांडवों को और सोमक वीरों को मारकर अपने वचनों को सत्य कीजिए, और यदि आपके मन में मेरे प्रति कोई द्वेष है, मेरे किए हुए कर्म यदि आपको याद आ रहे हों और वो आपके दिल में खटकते हों और पांडवों पर आपका आशीर्वाद टपकता हो, तो मेरे मंद भाग्य से आप पांडवों की यदि रक्षा करते हो तो अपने स्थान पर अब कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दे दीजिए और आप विश्राम कीजिए। वह अवश्य पांडवों को अपने सुदृढ़ बंधु बांधवों से परास्त कर देगा, मुझे इसमें पूर्ण विश्वास है। भीष्म जी के इतना कहने पर दुर्योधन मौन हो गया। हे धृतराष्ट्र महाराज, महामनस्वी, परम तेजस्वी, बड़े स्वाभिमानी भीष्म जी आपके पुत्र के वाणी के बाणों से बिंधे हुए बड़े दुखी हो गए। उनके मन में बहुत कुछ कहने की आई, परंतु उन्होंने कड़वा घूंट पी लिया। लंबे समय तक लंबे लंबे श्वास लेते रहे। उसके बाद उन्होंने अपने क्रोध से त्योरी बदल करके दुर्योधन को समझाते हुए कहा, दुर्योधन ऐसे वाग बाणों से तुम मेरे हृदय को क्यों छेदते हो रे? मैं तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं, तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए अपने प्राणों का होम कर रहा हूं, और तुम मेरे पर संदेह करते हो? आपने आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद देना अलग चीज है, मेरे युद्ध में कोई कमी है तो बताओ। देखो तुम्हें फिर कहता हूं, ये वही अर्जुन है जिसने इंद्र को परास्त करके खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था। बताओ, तुमने कथा सुनी है ना? जिस समय गंधर्व लोग तुम्हें पकड़ करके ले गए थे उस समय कर्ण तुम्हारे साथ ही था ना, तुम लोग मैदान छोड़कर भाग गए और तुमको बंदी बना लिया गया। उस समय अर्जुन ही तो था ना, विराट नगर में अकेले अर्जुन ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे, तुम भी तो वहीं थे ना। मैं और द्रोणाचार्य भी उसके सामने परास्त हो गए थे, कहां गए थे हम लोग। इसी प्रकार अश्वत्थामा, कृपाचारी और अपने पुरुषार्थ की डींग हांकने वाला कर्ण भी तो वहीं विराट में था और उत्तरा को उनके वस्त्र दिए थे, ये भी वीरता का प्रमाण है कि नहीं। फिर कहता हूं, जिसके रक्षक, जगत की रक्षा करने वाले शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण चंद्र हैं, उस अर्जुन को संग्राम में कोई नहीं जीत सकता। तुम आज कर्ण की बातें करते हो, मैं इतने दिन तक खड़ा तो रहा, कर्ण उसके सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। तुम जानते नहीं वसुदेव की शक्ति को, सारी जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले सबके ईश्वर, सबके पूज्य सर्वशक्तिमान। ये बात कई बार मैं तुमसे कह चुका हूं, किंतु तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं रखते हो। देखो, एक शिखंडी को छोड़कर मैं और सब सोमक तथा पांचाल वीरों को मारूंगा। अब या तो मैं ही उनके हाथों से मारा जाऊंगा या उन्हें ही संग्राम में मारकर तुम्हें प्रसन्न करूंगा। ये शिखंडी है, इसके ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा। राजा द्रुपद के घर में पहले स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ, फिर वरदान के प्रभाव से ये पुरुष हो गया, इसलिए मेरी दृष्टि में शिखंडिनी स्त्री है। इस पर मेरे प्राण कभी नहीं बरसेंगे, कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। ये आज भी कहता हूं, आगे भी कहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक यही बात कहूंगा। इसका तुम कुछ भी अर्थ लगा सकते हो, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और तुमको पता ही है कि मैं अपनी की हुई प्रतिज्ञा से कभी पीछे नहीं सरकता हूं। जाओ शयन करो, कल के युद्ध की प्रतीक्षा करो। राजन भीष्म जी ने इस प्रकार दुर्योधन को फटकार करके, प्यार करके, समझा करके विदा किया। वो डेरे में आ गया। कर्ण ने पूछा, तुम्हारे दादाजी ने क्या कहा दुर्योधन? दादाजी युद्ध भूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जो काम मैं अपने हाथ में लेता हूं मैं उसको किसी
श्रीमन नारायण नारायण नारायण।